सत्ता में रहती है कोई पार्टी तो वो एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होती है।
राजनीति से समाधान निकलना चाहिए समस्याओं का, और समस्याएं उलझना नहीं चाहिए।
सत्ताधारी सरकार होती है अगर वो पूरी तरीके से कोई चुनाव में लग जाती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते।
इट इज ओनली बिकॉज ऑफ BSNL कि सभी ऑपरेटर घबराते हैं, डरते हैं।
लैंड वाले केसेस में तो अक्सर फ्रॉड होता है।
नमस्कार, NV रेडियो के नए एपिसोड के साथ मैं हूँ आशीष दवे। आपकी, हमारी या फिर कहें आम जनों की सहूलियतों के लिए शासन प्रशासन द्वारा व्यक्ति विशेष की नियुक्ति के साथ साथ उसे विशेषाधिकार दिए जाते हैं, ताकि आम जन या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए संगठन को दस्तावेजों का प्रमाणीकरण व सत्यापन जैसी कई और छोटी मोटी लेकिन अहम औपचारिकताओं के लिए अधिकारियों की तलाश में भटकना न पड़े और न ही संबंधित अधिकारियों का समय जाया हो। इन्हीं कार्यों से जुड़ी एक नियुक्ति होती है नोटरी की। जीवन काल में हर किसी को कभी न कभी नोटरी से वास्ता पड़ता ही है। इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, नोटरी की नियुक्ति, पात्रता, दायित्व और उनके द्वारा की जाने वाली नजरअंदाजी और लापरवाही की। हम बात करते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता CM रावतिया जी से।
जो व्यक्ति वकील, प्लीडर, अटॉर्नी आदि लॉ की फील्ड में काम करते हैं वो नोटरी शिप प्राप्त कर सकते हैं। जो नोटरी नियुक्त होता है उसे शपथ पत्र, अनुबंध पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज की हुंडी, प्रमिसरी नोट, उनको प्रोटेस्ट लॉज करना, किसी भी दस्तावेज की ट्रू कॉपी देना, ये उनके अधिकार निहित होते हैं।
आइए समझते हैं नोटराइज करते समय किन सावधानियों को बरतना चाहिए।
नोटरी को रजिस्टर रखना आवश्यक होता है। जो भी व्यक्ति कोई भी दस्तावेज का प्रमाणीकरण कराने जाता है, माने ट्रू कॉपी को छोड़ के, तो उसकी एंट्री रजिस्टर में होती है और उन व्यक्ति के उस पर सिग्नेचर होते हैं। यदि नोटरी ने बिना संबंधित पक्षकार के सिग्नेचर लिए और उसे प्रमाणित कर दिया है तो साक्ष्य में जब प्रकरण जाता है तो ये प्रमाणित हो जाता है कि वो व्यक्ति नोटरी के पास गया ही नहीं था, क्योंकि उसके सिग्नेचर ही नहीं है। उसका परिणाम नोटरी साहब को भुगतना पड़ता है।
खैर, हम बात कर रहे हैं नियुक्त नोटरी के कार्य प्रणालियों की। कभी न कभी आप भी दो चार हुए होंगे इनकी कार्य प्रणाली से। ये बिना व्यक्ति को जाने पहचाने और जांचे परखे केवल 250-500 रुपए तक की छोटी सी रकम ले लेने के बाद किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म, मजहब या वर्ग तक का घोषित करने में मदद कर सकते हैं। और अगर आपको दस्तावेज प्रमाणित करवाना हो तो उसके मुताबिक ओरिजिनल दस्तावेजों से वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन प्राय ये जहमत नहीं उठाते। और तो और, रोजमर्रा से जुड़े ब्रांडेड कंपनियों की सब डीलर की तर्ज पर नोटरी भी साइन किए हुए ब्लैंक स्टैंप पेपर कई स्टैंप पेपर विक्रेताओं के पास रख देते हैं और स्टैंप पेपर विक्रेता नोटराइज्ड पेपर पर नाम पते भरकर आगे बेच देते हैं। इसी की एक नजीर राजधानी भोपाल की पुरानी विधानसभा के सामने स्थित स्टैंप पेपर बेचने वालों की दुकानें, जहां लगभग सभी विक्रेता नोटराइज्ड करने का दावा करते हैं, जिनसे लोग करवा भी लेते हैं। पूरे प्रकरण में सब डीलर की तरह नोटरी करने वाला और कराने वाले इसका लाभ उठा लेते हैं और चूना लगता है शासन प्रशासन और पात्र उम्मीदवारों को। अंत भला तो सब भला, लेकिन जब निकले हुए हाथी की भी दुम अटक जाती है तभी इन दस्तावेजों का खुलासा हो पाता है। जब भी कोई बड़ा घपला घोटाला सामने आए, चाहे वो जमीन जायदाद, नौकरी और सरकार से जुड़े व्यापार का मामला हो, आप यदि इसकी तह में जाएंगे तो पहली कुंडी के रूप में नोटरी द्वारा नोटराइज दस्तावेज ही मिलेंगे। अक्सर होने वाले घोटालों के बारे में जानते हैं।
लैंड वाले केसेस में तो अक्सर फ्रॉड होते हैं। अक्सर कोई भी व्यक्ति किसी की भी भूमि का मालिक बन करके चला जाता है, बट अब जब से ये ID प्रोसेस शुरू हुआ, फोटो प्रोसेस शुरू हुआ, पहले ये सब कुछ नहीं था। पहले गया मैं रावतिया, ठप्पा लगा दिया, अब मेरा फोटो लगेगा, मेरी ID लगेगी, उसके बाद ही होता है, तो अब वो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो गए।
शासन प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला हर निर्णय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए किया जाता है, जिसका हमें ईमानदारी से पालन करके सम्मान करना चाहिए। आइए अब आगे रुख करें, उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
उषा की पहली किरण से लेकर दिन ढलने का सिंदूरी एहसास, कुदरत की पवित्रता का साक्षात्कार, वसुंधरा की गोद में झूमती हरियाली, जब सुकून की हो तलाश, हम तुम और तन्हाई के आलम की हो चाहत, कोलाहल से दूर कुदरत की गोद में एक आशियाना, अपनों के साथ सुकून के क्षण, या पार्टी पिकनिक और धूम धड़ाके की तमन्ना, तो मंजिल है महुआ हाउस, समर्था रिजर्व फॉरेस्ट बैरियर, पडरिया रायसेन रोड, भोपाल 23। फोन 9425651754। वेबसाइट mahuahouse.in।
ब्रेक के बाद बात करते हैं शासन प्रशासन से जुड़े हुए एक और विभाग की, जो तत्पर है, संकल्पित है आपकी और हमारी जिंदगी में अहम भूमिका निभा रहे टेलीफोन की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की आजादी से पहले का और आज भी मजबूत संचार प्रणाली के लिए पहचाने जाने वाले भारतीय दूर संचार विभाग के भारत संचार निगम लिमिटेड की। शुरुआत करते हैं टेलीफोन के इतिहास से। मिस्टर वॉटसन, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। टेलीफोन पर यह पहला संदेश भेजा था अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल ने टॉम वॉटसन को। तारीख थी 10 मार्च 1876। टॉम्स वॉटसन मिस्टर अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल के टेलीफोन आविष्कार के मुख्य सहायक भी थे। दूरसंचार यानी कि टेलीफोन का यहां से शुरू हुआ सफर। दो दशक पहले चलते फिरते यंत्र मोबाइल फोन या चलित फोन तक आ पहुंचा। देश में मोबाइल की शुरुआत 1994 में हुई और पहली बातचीत तत्कालीन संचार मंत्री सुखराम और बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के बीच हुई थी। हमारा मूड टेलीकॉम घोटाला मंत्री सुखराम के घपले घोटालों के बारे में बात करने का नहीं है। बात कर रहे हैं हम देश में आए हुए अच्छे दिन या गर्दिश में आया हुआ दूर संचार विभाग। जी हाँ, 31 जुलाई 1995 को मोदी टेलेस्ट्रा GSM नेटवर्क कोलकाता में पहली मोबाइल की लॉन्चिंग हुई थी। हालांकि ये निजी कंपनी के लिए की गई थी। इसके बाद से कई और कंपनियों ने दस्तक दी। नए इक्विपमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट, नए जोश, नए लोग, नई तकनीक ने खास को नहीं आम जन को भी ऐसे दीवाना बना दिया। दीवानेपन ने शह दी है हमारे 100 साल पुराने संचार विभाग को। आखिर कैसे इन चुनौतियों से जूझ रहा है हमारा मजबूत दूर संचार विभाग? बात करते हैं BSNL के मुख्य महाप्रबंधक से।
जो कहा हुई बात सही है कि हम लोगों के यहाँ जो स्टाफ DOT से ट्रांसफर हुआ है, वो सारा का सारा स्टाफ रियली वास्तव में 50 साल के ऊपर की उम्र का है। लेकिन अगर भोपाल में अकेले में देखे या 7,500 लोगों का HR में देखे, हमारे सर्कल लेवल पर 7,500 एम्प्लॉई है, तो उसमें से करीब 2,000 एम्प्लॉई 30 साल से नीचे की उम्र के हैं, जिनके नया इंडक्शन हुआ है, नया जो अपॉइंटमेंट हुआ है। BSNL ने वो दौर भी देखा है कि जब रिलायंस जियो ने फ्री में देना चालू किया, और BSNL ने वो दौर भी देखा है जब एयरटेल ने 16 रुपए प्रति मिनट चार्ज किया। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ BSNL कि सभी ऑपरेटर घबराते हैं, डरते हैं कि वो मनमाने चार्ज नहीं ले सकते, नंबर वन। नंबर टू, BSNL इज द ओनली ऑपरेटर जो कि गांव में जाता है, ट्राइबल एरिया में भी जाता है। तो ट्राइबल एरिया में जाने के कारण, गांव में जाने के कारण लोगों को, ऑपरेटर्स को पता है कि उनको अगर कम्पीट करना है तो सभी जगह टावर लगानी पड़ेगी। मतलब एक प्लान है कि 999 रुपीज में साल भर अनलिमिटेड कॉलिंग करो और अनलिमिटेड डेटा ले लो साल भर। अन्य ऑपरेटर 400 रुपए में 3 महीने देते हैं, तो 400 400 400 1200 रुपए बन जाते हैं उनके। हम तो 999 में दे रहे हैं।
हमारी शुभकामना है महाप्रबंधक महेश शुक्ला जी को नई चुनौतियों से भरी पदोन्नति के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर और जानते हैं वरिष्ठ पत्रकारों से आज की राजनीति का रुख किस ओर जा रहा है। सबसे पहले हमने बात की सतीश जी से। सतीश जी डीबी स्टार दैनिक भास्कर के संपादक हैं।
भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है वो और प्रमुख विपक्षी दल जो है कांग्रेस, वो दोनों इस समय इन दोनों उपचुनाव में पूरी तरह से लगी हुई है। दोनों दलों के सारे बड़े नेता और सरकार दोनों उपचुनाव पर उनका पूरा ध्यान केंद्रित है, क्योंकि ये दो उपचुनाव है विधानसभाओं के, ये एक तरह से आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2018 का, उसका एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो इसके जो नतीजे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आगे का पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह से रहेगा।
जी सर।
और केंद्रीय स्तर पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो 2019 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसके इर्द गिर्द केंद्रित होता जा रहा है। हालांकि अभी उसमें करीब 1.5 साल बाकी है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में बदलाव हुआ है, राहुल गांधी उसके अध्यक्ष बने हैं, तो कांग्रेस एक नए सिरे से सत्ता में लौटने की तैयारी कर रही है, नए तरह से अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है, या नए तरह से मुद्दे, या बीजेपी को कैसे फाइट किया जाए, बीजेपी से कैसे मुकाबला किया जाए, उसकी तरफ वो रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यह होगा कि अब राहुल गांधी की जो नई टीम बनने वाली है, कार्यकारिणी बनने वाली है, वो उसका स्वरूप क्या रहेगा, उसकी शक्ल क्या रहेगी।
तो इसमें जो हमारा आम आदमी है उसकी तरफ भी किसी का ध्यान जा रहा है इन पॉलिटिकल पर्सन्स का?
देखिए, इसी वजह से पहले आमतौर पर ऐसा भी होता था, केंद्र सरकार के पहले मध्य प्रदेश का बजट आ जाता था कई बार, लेकिन केंद्र सरकार के बजट का इंतजार में ही मध्य प्रदेश का जो विधानसभा का बजट सत्र है वो लेट शुरू हो रहा है, और लगभग उसी की प्रतिकृति हम कह सकते हैं कि उसी के अनुरूप उसी लाइन पर वो बजट होगा। मुख्यमंत्री जी की पिछले बीच कुछ दिनों की आप घोषणाएं यदि देखेंगे तो वो सब किसान केंद्रित हैं।
केंद्र में दूसरी, प्रदेश में चौथी बार बीजेपी का सत्ता में आना एक की वर्चस्व की और दूसरे की वजूद की लड़ाई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अक्स मैगजीन के संपादक राजेंद्र आगल जी से।
जिस तरीके से मोदी सरकार को 4 साल हो गए हैं और 4 साल में जो जनता है वो उनसे सवाल ये पूछ रही है कि आपने हमको दिया क्या है।
जी।
आज अगर देखते हैं तो डिलीवरी के नाम पे कोई भी चीज नहीं है, बेरोजगारी देश में पूरी तरह व्याप्त है, महंगाई भयंकर तरीके से फैली हुई है, लोगों के पास काम नहीं है, युवा जो है इस समय बहुत परेशान है। आज की तारीख में किसी भी तरीके से सरकार से नाराजगी उनकी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। व्यवसायी देख लें, शिक्षित बेरोजगार देख लें, चाहे ब्यूरोक्रेट देख लें, सभी लोग चारों तरफ से परेशान है। राज्य की बात करें तो राज्य में समय पे मध्य प्रदेश में 2 जगह पे उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ताकत झोंकने से उनके परिणाम तो बाद में आना, परिणाम के बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, पर यहाँ ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जब सरकारें, जो सरकार सत्ताधारी सरकार होती है, अगर वो पूरी तरीके से कोई चुनाव में लग जाती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते।
आज की राजनीति के बदलते हुए मायने, अब जरूरत है चिंता चिंतन के साथ जागरूकता की। देखना है कितने कामयाब होते हैं हम और हमारी पीढ़ी। क्या सोचते हैं आप? हमने अगला सवाल किया वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी से, जो द वीक में स्पेशल करस्पोंडेंट हैं और राजनीति नाम की बहुचर्चित पुस्तक के लेखक भी हैं।
जिस तरह से अभी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, खासतौर से देश में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, और जिस तरह से पोलराइजेशन हुआ है, और राजनीति कभी भी समाज में इतनी ज्यादा चढ़कर नहीं बोलती रही है, और खासतौर से जो सोशल मीडिया आया है उसके बाद में जो लोगों के बीच में एक विभाजन की रेखा खींची है, वो मुझे लगता है कि आज के समय में एक चिंताजनक, और आने वाले समय में ये चीजें और बढ़ेंगी। तो अपेक्षा राजनीति से यही है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएं, हम जहां से शुरू हुए थे वापस वहां ना पहुंचे। आज हम 70-80 साल आगे निकल आए हैं तो बहुत अच्छे राष्ट्र के रूप में, अच्छे लोकतंत्र के रूप में, तो कहीं वापस से वो चीजें फिर से जीवित होने लगे।
देश की जो राजनीति है जो अस्थिरता की ओर जा रही है, तो इससे जो देश की जो आम जनता है उसको तो जैसा आपने कहा है कि नुकसान झेलना ही पड़ेगा, लेकिन क्या लगता है आपको कि ये कब तक इस तरह का मतलब माहौल बना रहेगा?
देखिए, राजनीति तो बहुत फ्लूइड सब्जेक्ट है, ये हर दिन हर क्षण पर हर पल बदलता रहता है। अब कौन सा राजनीतिक दल आगे आएगा ये तो नहीं कह सकते। ये जरूर है कि लोग तो वही है ना, हम और आप तो वही है, हम और आप में तो कोई परिवर्तन नहीं है, और कोई अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी तो भारत आ नहीं जाएगी, या इंग्लैंड की लेबर पार्टी नहीं आ जाएगी, पार्टियां तो यही रहेंगी, दल तो यही रहेंगे, किंतु राजनीति से समाधान निकलना चाहिए समस्याओं का और समस्याएं उलझना नहीं चाहिए। तो वो लोग, वो दल जो उलझाने की राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि जब उनको सोचना चाहिए, और लोगों को अब ये समझना चाहिए, क्योंकि लिटरेसी बढ़ रही है तो लोगों को लोकतंत्र का जो मूल भाव है वो समझना चाहिए कि लोकतंत्र किस लिए है। क्या ये राजतंत्र है? क्या किसी एक दल, एक व्यक्ति, एक विचार का तो देश नहीं है? यहाँ पर सभी लोगों का कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, और उन्हें जो लोग हैं उनको इन सब बातों पर विचार करना चाहिए।
2018 का वर्ष चुनाव का वर्ष, जिसका अभी बिगुल तो नहीं बजा, लेकिन सुगबुगाहट हो गई है शुरू। ऐसे में ये वक्त है हर खासो आम की राय शुमारी का। हर छोटी बड़ी राय और लिया जाने वाला निर्णय चुनावी नजरिए से बेहद अहम होते हैं। खैर, अगले एपिसोड में हम किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप भी किसी खास मुद्दे को जनता जनार्दन और सरकार की नजरों में लाना चाहते हैं या देना चाहते हैं हमें कोई सुझाव, तो आप हमें NVMP तरुण पर ट्वीट कर सकते हैं, या फिर tarun.nvmp@gmail.com पर कर सकते हैं मेल। मोबाइल नंबर है 9425013850। हमारा पता है 232 जोन 1 MP नगर भोपाल। तो अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।